तारीख 18 जुलाई बीबीसी इंडिया बोल दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आईपीएल में फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर जस्टिस लोढ़ा समिति के फैसले ने एक पिटारा खोल दिया है। आईपीएल की दो टीमों पर पाबंदी है, साथ ही मैयप्पन और राजकुंद्रा के क्रिकेट से जुड़े रहने पर आजीवन रोक लगा दी गई है। क्या समिति का यह फैसला आईपीएल में भ्रष्टाचार को कम कर पाएगा या फटाफट क्रिकेट के दौर में इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिखता, चर्चा होगी इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। सऊदी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई ने कहा है कि देश के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बावजूद अमेरिका के प्रति ईरान का रवैया नहीं बदलेगा। रमजान खत्म होने पर दिए भाषण में खमेनेई ने कहा कि अब भी मध्य पूर्व को लेकर अमेरिका से ईरान के गंभीर मतभेद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान मध्य पूर्व में अपने साथियों का समर्थन करता रहेगा। खमेनेई ने कहा, हम इस क्षेत्र में अपने दोस्तों का समर्थन बंद नहीं करेंगे। फलस्तीन के दबे कुचले लोग, यमन के दबे कुचले लोग, सीरिया के लोग और वहां की सरकार, इराक की सरकार, बहरीन के दबे कुचले लोग और लेबनान और फलस्तीन के सच्चे जिहादी। आयतुल्लाह अली खमेनेई के शब्द। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस हफ्ते की शुरुआत में ही कई सालों की बातचीत के बाद समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान प्रतिबंधों में ढील के बदले परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा। सऊदी अरब में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के 430 संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया है। ये आंकड़े इस साल की शुरुआत से अब तक की गई कार्रवाइयों के हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय का दावा है कि इन लोगों को हिरासत में लेने के साथ ही कुछ साजिशों को नाकाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन साजिशों को नाकाम किया गया उनमें सुरक्षा बलों के सदस्यों की हत्या और मस्जिदों पर आत्मघाती हमले शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट ने सऊदी अरब में मई में दो शिया मस्जिदों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इन हमलों में 25 लोग मारे गए थे। चीन में पिछले दिनों हिरासत में लिए गए सैलानियों के एक समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि यह घटना चंगेज खान पर एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर गलतफहमी से हुई थी। इन सैलानियों ने भीतरी मंगोलिया के आर्डोस में अपने होटल में चंगेज खान से जुड़ी जगहों के बारे में एक फिल्म देखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी अधिकारियों ने इसे चरमपंथी वीडियो समझा था। इस समूह में ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। इस समूह के 11 सदस्यों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। बाकी बचे 9 लोगों में एक भारतीय भी है। इन लोगों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं और चीन की पुलिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में वेस्टगेट शॉपिंग मॉल को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। वेस्टगेट शॉपिंग मॉल पर 2 साल पहले सोमाली चरमपंथी गुट अल शबाब ने हमला किया था। इस हमले में 67 लोग मारे गए थे। शनिवार को इस मॉल के बाहर लोगों की कतारें लग गई। इस मॉल की करीब आधी दुकानों को फिर से बनाया गया है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मॉल में घुसने से पहले लोगों की जांच की जा रही थी। ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस ने बीबीसी से कहा है कि उनके देश के सामने कर्ज देने वालों ने आर्थिक सुधार की जो शर्तें लगाई हैं वो नाकाम होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक सुधार कार्यक्रम इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक प्रबंधन आपदा के तौर पर दर्ज होंगे। जर्मन संसद ने शुक्रवार को कर्ज देने के लिए बातचीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बेलआउट पैकेज 60 अरब पाउंड का हो सकता है। वारोफाकिस ने कहा कि जो भी इसे लागू करना चाहे ये कार्यक्रम नाकाम होने वाला है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप bbchindi.com पर सुन रहे हैं और हमारी मोबाइल साइट पर भी सुन रहे हैं। मेरे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन। आप विषय अब तक जान चुके हैं, विषय ये है कि आईपीएल का भविष्य क्या है और भी बहुत सारी बातें होंगी। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। प्रदीप जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप ही से करते हैं। ये जो जजमेंट आया
जी,
लोढ़ा साहब का जो जजमेंट आया, अब आपको क्या लगता है कि अब आईपीएल का क्या होगा? दो टीमें गायब हो गई।
देखिए, आईपीएल का क्राइसिस तो है ही है, और ये काफ़ी सालों से है कि जैसे एलिगेशंस लगते रहे, खिलाड़ी पकड़े गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोर्ड प्रेसिडेंट। पहली दफ़ा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि ऑफिशियल्स, टीमें बैन हुई हैं, ऑफिशियल्स को बैन लगा है, और ये बोर्ड की वजह से नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। और ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के बोर्ड को ये बताया है कि ये जो खेल है ये कोई प्राइवेट खेल नहीं है, इसमें
आप खेल ना खेलें।
हाँ, इसमें आप खेल ना खेलें, इसको खेल रहने दीजिए, और इसमें अगर कोई गलतियां हो रही हैं, कोई करप्शन हो रहा है, तो उसको करेक्ट कीजिए, पनिश कीजिए, क्योंकि ये खेल देश और लोगों की वजह से चलता है, ये कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, जो बोर्ड इसको प्राइवेट एंटरप्राइज बना चुका है।
आप बात कर रहे हैं कि जजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जो मामला है जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है, और जनहित याचिका दायर करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम आदित्य वर्मा है। कल हमने कार्यक्रम में उनसे एक बातचीत सुनी थी, सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आदित्य वर्मा साहब को। आदित्य वर्मा जी, आपने जनहित याचिका दायर की, अदालत ने उस पर फैसला सुनाया, अब आगे क्या करने वाले हैं?
आगे अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, बीसीसीआई करेगा। बीसीसीआई को अगर अभी भी होश नहीं आएगा तब सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि 14 जुलाई को जो रिपोर्ट का एक पार्ट का जजमेंट हुआ है, अभी दो पार्ट आना बाकी है, तो अभी बोर्ड लगा हुआ है कि किसी तरह से आईपीएल को कैसे बचाया जाए। अरे भैया, पहले ये देखो कि बीसीसीआई को कैसे बचाया जाए। अभी मैगजीन सर ने जो बात बोला एकदम ठीक बात बोला कि ऑटोनोमस बॉडी मान के तुम सारी हरकतें करते थे और तुम बच जाते थे, लेकिन मत बोलो जब तुम हिंदुस्तान का टीम का चुनाव करते हो, तुम्हारे क्रिकेटर्स को खेल मंत्रालय से भारत रत्न तक का अवार्ड मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये कह के तुम अपने आप को नहीं बचा सकते हो कि तुम ऑटोनोमस बॉडी हो,
स्वायत्त संस्थान है। जी आदित्य वर्मा जी, कार्यक्रम में आपको फिर से शामिल करूंगा, एक श्रोता को शामिल करते हैं जो कि शामिल हो चुके हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप?
हेलो, रावतगंज से मैं बलबीर सिंह बोल रहा हूं।
बलबीर सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बताइए क्या सोचते हैं आप?
हमारा तो यही मानना है कि अगर ये निर्णय से, अगर सबसे पहले तो जो आदित्य वर्मा बिहार क्रिकेट की एसोसिएशन के सचिव हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने तरीके से पैरवी करके इतने अच्छे मुकाम तक इस मुकदमे को पहुंचाया। और दूसरी बात जहां तक है इस खेल के में साफ और साफ गोई की, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने की आदित्य वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बीसीसीआई एन श्रीनिवासन की जो जागीर थी अब तो नहीं चलेगी, धोनी दद्दा जो बने थे क्रिकेट से राज करने के लिए, और उनकी टीम भी सफाए, अब वो किधर जाएंगे, अब वो तो बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स की इंडिया सीमेंट फैसला करेगी। मेरा तो मानना है कि इस एक निर्णय से भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी। ये जो श्रोता बलबीर भाई कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, आपको लगता है इसके संकेत दिख रहे हैं बड़ा बदलाव के, और श्रीनिवासन का क्या होगा?
देखिए, संकेत इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि जो ये 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जो कमेटी जस्टिस लोढ़ा साहब हैं, वो अब उनका जो सेकंड है वो ज़्यादा क्रूशल रोल ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे। उन्होंने एक 80 क्वेश्चनियर सवालों का बोर्ड को और काफ़ी लोग सौंपा है, जिसमें उन्होंने काफ़ी टफ क्वेश्चंस उनसे पूछे हैं, और जिसमें सेंटर में है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि क्या कोई सिलेक्टर, जब आप सिलेक्टर बनाते हैं क्या वो डिस्क्लोज करता है कि उसका लड़का खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्या ऑफिशियल डिस्क्लोज करता है कि उसका बोर्ड के साथ कमर्शियल संबंध क्या, तो इस तरह के जो सवाल हैं, और उनका ये जो अब आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसमें मेरे को लगता है वो कई चीज़ें सजेस्ट करेंगे जो मैंडेटरी हैं, जिसमें बोर्ड को अपना सुधार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई होंगे, इसमें काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए,
और ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आदित्य वर्मा जी, अगर बदलाव होंगे तो आपको क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा सुधर जाएगी, और ये खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले हैं या फिर जो तमाम नाम अभी भी लिफाफे में बंद हैं, अगर ये सामने आ गए तो बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा?
देखिए, कच्चा चिट्ठा क्या कह रहा है ये तो हम नहीं बताऊंगा, लेकिन बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। अभी दो पार्ट का ऑर्डर आने दीजिए, सुंदर अमन जी का ऑर्डर आने दीजिए सीओ साहब का, तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग मेन हीरो थे जो पर्दे के पीछे से श्रीनिवासन साहब अपने बैठ के इन लोगों से गोटी शतरंज के माफी गोटी चलवा रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तो विलेन तक करार किया है अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ एक सबसे अहम सवाल है कि बीसीसीआई टीम बनाती है हिंदुस्तान की, लेकिन बीसीसीआई के नक्शे पर सिर्फ 18 स्टेट है जिसमें 3 स्टेट 8 रणजी ट्रॉफी टीम देती है। 18 स्टेट से टोटल रणजी ट्रॉफी टीम 27 खेलते हैं, जिनके लोग जो खेलते हैं अपने परफॉर्मेंस पे नेशनल टीम में आते हैं, लेकिन 11 स्टेट जो हिंदुस्तान के नक्शे में 29 स्टेट है उसमें 11 स्टेट को बीसीसीआई लगता है कि अभी भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे क्रिकेट हो।
आदित्य वर्मा जी, ये थोड़ा सा विषय अलग हो गया, ये एक अलग विषय हो गया।
नहीं, विषय अलग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ के देख रहे हैं कि 18 स्टेट जो उनका है वो जो जिसके लोग बीसीसीआई के 30 लोगों की जो एक वोटिंग राइट्स की जो एक समूह है।
तब खेल बदलेगा, तब खेल बदल सकता है। बिल्कुल, तब खेल बदल सकता है। कार्यक्रम में एक श्रोता को जगह दे रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
गांव बैलोगना तहसील गुड़ामलानी जिला बाड़मेर से हरीश बेड़ बात कर रहा हूं सर।
हरीश जी हाँ, अपनी बात रखिए।
पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, धरती सूख सकती है, दरिया नहीं दुनिया सुधर सकती है, पर ये आईपीएल का खेल है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव ऐसे जो रूल्स निकाले तो उसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है सर। लेकिन इसमें जो अभी राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध लगा है वो जरूर जान जाएंगे कि भी ऐसा भ्रष्टाचार करने पर आगे रोक लगाई जा सकती है। जैसे जैसे श्रीचंद्र ने जो भ्रष्टाचार के मामले में कुछ पैसे लिए थे उनको बिल्कुल अपने नौकरी से सस्पेंड कर दिया, तो आगे ऐसा खिलाड़ी जैसे राजस्थान का मनीष पांडे था, उसके क्या नाम था, उसको पैसे ले गया और स्पष्ट मना कर दिया मैं ऐसा जब काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद में पूरी पोल खुल चुकी है इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर कुछ बदलाव लाया जा सकता है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया। आईपीएल 6 में साल 2013 के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो अंकित चौहान और श्रीसंत और अजीत चंदेला को गिरफ्तार किया था और आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला उस समय सामने आया था, आपने इस पर एक पूरी किताब लिखी है, उस समय जेल भेज दिया गया इन लोगों को, मालिकों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं हुआ?
देखिए, यही सबसे बड़ा एक विषय है जिसमें खिलाड़ियों को तो एकदम से ऑफिशियल्स या पुलिस भी अंदर कर दिया कि भाई इन्होंने फिक्स किया है जी, ये बड़ा गलत किया है, लेकिन जो लोग उनसे करवा रहे हैं या जो लोगों की वजह से ये हो रहा है उनकी, जैसे कि राजस्थान के तो जो मालिक हैं कुंद्रा साहब, वो खुद ही मतलब अगर बैटिंग कर रहे हैं तो इसको हम कैसे ना मतलब ना माने कि अगर वो खुद सट्टा लगा के पैसा बना रहे हैं और उन्हीं टीम के खिलाड़ी भी सट्टा लगा रहे हैं, तो एक इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं कि एक शक बढ़ता है कि क्या ये मिले जुले थे, क्या ये मिली जुली बात है, या अगर चेन्नई सुपर किंग का जो गुरुनाथ मैयप्पन उनका हाँ, तो खैर हाँ, उनको जेल हुई थी, कि अगर वो सट्टा लगा रहे हैं और वो टीम चला रहे हैं, तो जो जैसे मैं अगर मैं आज यहाँ ये खबर कुछ बोलने वाला हूँ और मुझे पहले पता मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं इस पर सट्टे से पैसा बना सकता हूँ तो मैं अपना कहूँगा जी देखो जी आज ये होने वाला है वहाँ पर, तो ये कैसे माना जाए कि गुरुनाथ मैयप्पन टीम की इनसाइड इंफॉर्मेशन ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से ये मामला लीगली चाहे ये कितना वीक या साउंड हो, लेकिन एक एथिक्स स्पोर्ट्स का मतलब सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का क्या एक जो बढ़िया चीज़ है कि आपको ये नहीं पता होता कि आज तेंदुलकर सैकड़ा करेगा कि जीरो पे आउट होगा,
कितनी साठगांठ है, इस पे बात करेंगे। एक श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हेलो सर, नमस्कार।
अरे भाई, नाम तो बताइए।
जिला बाढ़ में राजस्थान से बोल रहा हूं।
नाम तो बताइए।
वीरेंद्र कुमार।
हाँ वीरेंद्र भाई, बताइए
जी। सर, ये चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान और 2 साल के लिए मैच कोई नहीं खेले,
भाई आप राजस्थान से हैं और आपकी टीम बाहर हो गई, राजस्थान आपको धक्का लगा है?
हमको बहुत बड़ा धक्का लगा। ये क्या नई टीम बना सकती है दोनों मिलकर, कोई क्या दोबारा इनकी नीलामी होगी?
जी जी, सवाल अच्छा है। सवाल अच्छा है, ये दोनों मिलके, ये दोनों टीमें बाहर हो गई, क्या इनके खिलाड़ी मिलके एक नई टीम बना सकते हैं?
देखिए टीम तो अब बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी हैं और ये जो ओनर्स हैं, ये दो साल तक टीम नहीं चला
पाएंगे। अभी छह टीमें हैं, आठ रहेंगी या छह ही रहेंगी?
ये जैसे अब शुक्ला जी जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, उन्होंने राजीव शुक्ला जी, उन्होंने परसों बोला कि हम छह से नहीं चला पाएंगे क्योंकि इसमें पैसे बड़े जुड़े
हैं,
60 मैच होने हैं, तो इनको दो टीमें लेनी है। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि बोर्ड को आईपीएल सोचने की बजाय, कि जैसे शुक्ला जी बोले कि आईपीएल अगला इससे भी बड़ा होगा, ये बेहद मेरे ख्याल से एक शर्म की बात है कि बोर्ड इस वक्त ये कहने की बजाय कि हमसे गलती हो गई है, हमको एक्शन लेना चाहिए था, हम सुधारेंगे, हम सब कुछ करेंगे, वो अभी भी ये रट्टा लगा रही है कि आईपीएल जी बहुत बड़ा होगा 2009 में।
मतलब बुनियादी जो मूल है, हाँ, उसकी चर्चा नहीं हो रही
नहीं है।
वर्मा जी, बुनियादी बात की चर्चा नहीं हो रही है और हम कह रहे हैं कि भाई और बड़ा भव्य शानदार आयोजन करेंगे। हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि साठगांठ जो है, जो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के जो इनके मालिक हैं, इनके ऊपर क्या कहेंगे आप?
देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2013 में जब आईपीएल स्कैम हाईलाइटेड हुआ था, और उस समय राजीव शुक्ला जी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक मिसाल कायम की थी नैतिकता की, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, बड़ा चारों तरफ उनकी तारीफें हुई थी। लेकिन सबसे दुखद आश्चर्य घटना ये रही कि अभी वो जांच सुप्रीम कोर्ट से लोढ़ा समिति तक ही पहुंची थी, लेकिन पता नहीं लगता है कि क्या ऐसा हो गया कि वो राजीव शुक्ला जी फिर से आईपीएल चेयरमैन बन गए। और अब तो, उस समय तो मामला हाईलाइटेड हुआ था, अब तो आईपीएल का सारा कच्चा चिट्ठा लोढ़ा जी ने खोल के रख दिया है, तो फिर राजीव शुक्ला का कोई नैतिकता कहाँ चली गई? क्यों उनको सबसे पहले अविलंब अपने ऊपर जवाबदेही लेते हुए त्यागपत्र देना चाहिए चेयरमैन से, ताकि आम आवाम को लगे कि वाकई बीसीसीआई सीरियस है। हंसी तो इस बात की आ रही है कि बीसीसीआई की बैठक होनी चाहिए थी लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के बाद, लेकिन आईपीएल की बैठक हो रही है उनको, क्योंकि आईपीएल उनके लिए क्या बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं गुल्लड़ का फूल, जो बैठे पैसा बनाता है
जी।
लेकिन उनको देश का मान सम्मान, बोर्ड के इज्जत का कोई नहीं है।
वर्मा जी जो आप बात कह रहे हैं, वही प्रदीप साहब भी कह रहे हैं, एक ही जैसी बात कह रहे हैं। यहीं पर कार्यक्रम में श्रोता को और शामिल कर लेते हैं जी। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, कहां से बोल रहे हैं?
उत्तर प्रदेश।
अच्छा, वाह वाह वाह, मोदी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बोल रहे हैं, स्वागत है आपका, क्या नाम है?
जी सर, धन्यवाद सर। दुर्गेश कुमार गुप्ता।
दुर्गेश कुमार गुप्ता जी, मैच देखते हैं, आईपीएल देखते हैं?
जी जी, आईपीएल हम देखते हैं सर।
तो आपको क्या लगता है, ये जो जस्टिस लोढ़ा समिति का जो फैसला आया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये जरूरी है?
जी सर, जो समिति ने फैसला दिया है उससे सर हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, लेकिन सर हम यहाँ एक बात अपने रखना चाहते हैं कि जो अभी बड़ी मछलियां हैं वो जाल से बाहर हैं सर, अभी तो समिति ने छोटी मछलियों को ही अपना जाल फैलाया है, और सर जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार को कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सफाया नहीं किया जा सकता है इस भ्रष्टाचार का, जो कि इस आईपीएल के द्वारा क्रिकेट में फैला हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की जो टिप्पणी हमारे फेसबुक पर, एक कमेंट आया है बबलू झाकड़ साहब का, ये कहते हैं कि मगरमच्छ बच गए, छोटी मछलियां कुछ तकलीफ में जरूर आ गईं। वर्मा जी, लगता है आपको?
मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ ना।
नहीं, आप मगरमच्छ का इंतजार कर रहे हैं कि छोटी मछलियां?
नहीं नहीं नहीं, आप बात मेरा समझिए, जो पूछ रहे हैं उनको बोलिए मगरमच्छ तो एक बैन होके बाहर चले गए, लाइव बैन हो गए, और जो बड़े मगरमच्छ एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको बीसीसीआई से ही बाहर कर दिया गया, लेकिन दुख इस बात की है कि बीसीसीआई आज भी उनको आईसीसी में बिठा के रखा हुआ है। इंतजार कीजिए, दो पार्ट का रिपोर्ट आने दीजिए, जितने भी तालाब के मगरमच्छ हैं वो सभी जाल में आएंगे
जी। आदित्य वर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रदीप जी, वापस आ रहे हैं आपके पास, मगरमच्छ बच गए।
देखिए वैसे दो साल का बैन कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था, ये भी एक मगरमच्छ है, लेकिन सवाल ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जो श्रीनिवासन की वजह से उन्होंने खुद ही अमेंड किया, और वो अकेले इसमें नहीं थे, तो सारे बोर्ड ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन इसमें एक बड़ा मगरमच्छ तो लंदन में बैठा जो ट्वीट करी जा रहा है, जो यहाँ से आएंगे नहीं, एब्सकॉन्डी बागी गए हैं। दूसरे जो मगरमच्छ हैं वो उनका फेट मेरे को लगता है कि सील हो ही जाएगा, जैसे कि आदित्य वर्मा जी भी कह रहे हैं, जो सेकेंड जब सुंदर रमन पे गाज गिरेगी, जो तीसरे जो बाकी मगरमच्छ जो साथ में हैं, जो कभी बोलते हैं आईपीएल को बड़ा कर देंगे, जो मतलब जिनको शायद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड को रहनी चाहिए थी, बोर्ड को खुद पहले ये मीटिंग करनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोधा कमेटी का जो आगे का जो जो भी आएगा, जो सुधार होने की पॉसिबिलिटी है वो वहीं से आएगी, तो हमको उम्मीद करनी चाहिए कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दे जिसकी वजह से ये जितने भी मगरमच्छ हैं ये कितनी भी कोशिश कर ले ये रेगुलेट होंगे, और शायद क्रिकेट की जो इतना इन्होंने बदनामी दी है वो सुधरे।
कार्यक्रम में एक श्रोता को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो
जी, मैं मोहम्मद गुफरान अंसारी बोल रहा हूँ।
अंसारी जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप।
रैली बस्ती फौरवीरगंज जिला अररिया।
अररिया से बोल रहे हैं, ईद मना रहे हैं।
जी सर, ईद बहुत बढ़िया मना रहे हैं।
वाह वाह क्या बात है। हाँ अपनी राय रखिए।
जी हम ये रखना चाहते हैं, ये आईपीएल मैच में जो है मतलब ये इंडिया से कर देना चाहिए सर, इसलिए कि बहुत सारा घोटाला हो रहा सर। ये मतलब
आप ये कह रहे हैं कि इंडिया से खत्म कर देना चाहिए।
जी 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 सर, हम ये कह रहे हैं इंडिया से इसको खत्म ही कर देना चाहिए, जी बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा सर।
बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। भाई इनका इनका जो कहना है कि बंद करो इसे,
देखिए
बंद करने से क्रिकेट का नुकसान।
देखिए हमको इस वक्त ये जो आईपीएल का जो सबसे बड़ा जो, क्योंकि ये एक इतनी स्पॉन्सरशिप है, इतना पैसा है, इतनी पब्लिसिटी
और
है,
भारतीय जो बोर्ड है अमीर इसी की वजह से,
भारतीय बोर्ड अमीर इस वजह से हुआ है, मीडिया में उनको पैसे बनते हैं, ऐड आते हैं, तो जो एक आईपीएल का जो स्पॉन्सर्ड इवेल्युएशन जो उसका मतलब बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, जो हम मीडिया में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, एक तरीके से बड़ा स्पॉन्सर्ड है आईपीएल ने क्या।
लेकिन भाई 2020 तो बंद हुई ना, तो उसमें क्या दिक्कत है।
नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आईपीएल का हमको इंडियन क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा हुआ है कि फ़ायदा ज़्यादा, मैं समझता हूँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है जब से आईपीएल आया हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, इनफैक्ट जब से आईपीएल आया है तब से हमारी
खबरों में ज़्यादा हो गए,
एक तो वहाँ दूरदर्शा हो रही है, दूसरी हमारी जो टेस्ट टीम है उनकी जो इंग्लैंड में हालत, जो ऑस्ट्रेलिया में हालत,
बांग्लादेश में जो हालत,
तो अगर आईपीएल पहले आईपीएल चले ठीक है, रेगुलेट होके चले और उसके जो अच्छाइयां हैं उसमें रहने दिए जाएं, लेकिन उसके बुराइयां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जब तक उसका सुधार ना हो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई भी है। अगर एक साल दो साल के लिए बोर्ड कह दे कि हम आईपीएल को रोकते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि जो पैसा ही बोर्ड का, तो ये कोई प्राइवेट बॉडी तो है नहीं कि उनके प्रॉफिट्स उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके प्रॉफिट्स वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत बनते हैं, तो अगर ये रोका भी जाए और उसके बाद फिर अच्छी तरह से शुरू किया जाए इसमें कोई खराबी नहीं है।
मोहम्मद अजरुद्दीन को याद कीजिए, साल 2000 की बात है, 5 साल का उन पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद क्रिकेट से दूर हो गए, अजय जडेजा का नाम आया, कपिल देव का नाम आया, अजय शर्मा का नाम आया, बीसीसीआई ने प्रतिबंध लगाया, आज इनके क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुके हैं लगभग, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर इस प्रकरण को आप आईपीएल के प्रकरण को ज़रा कंपेयर करें।
देखिए उस वक़्त जितना धक्का इंटरनेशनल इमेज को लगा था, क्योंकि हिंदुस्तान के नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हंसी ग्रोनिया पकड़े गए,
इस शुरुआत वही थी,
शुरुआत वो थी, उसके बाद एंटी करप्शन यूनिट बना और लोगों को लगा कि शायद नहीं हो रहा है, लेकिन आईपीएल ने क्या कर दिया, क्योंकि एक सेलिब्रिटी लीग आ गया जिसमें प्लेयर प्राइवेट एंटरप्राइज ग्लैमर इकट्ठा हो गया है, उस वजह से ये जो ये 40 दिन जो ये खेल चलता है उसमें एक कोई लकीर ही नहीं है एथिक्स की, मॉरालिटी की, स्पोर्ट की, उसमें सिर्फ ये है कि जितना इसको मिल किया जाए वो टीवी के थ्रू, और उसमें खिलाड़ियों को कैसे भी यूज़ क्यों ना किया जाए। अब खिलाड़ी यंग हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी पैसे वाले तो हैं नहीं, कुछ चंद टॉप के छोड़ के जो यंग आते हैं वो ऐसे माहौल में जब खेलते हैं तो वो नेचुरली वो टेम्प्ट भी हो जाते होंगे, और अगर मतलब जो जो उनको खिलवा रहे हैं उन्हीं का वो जो ऐसा हाल देख रहे हैं वो सोचते हैं हमारा तो एक साल है दो साल है जितने पैसे हैं अब कमा लो, तो उस वजह से जो इसका नुकसान जो है वो इतना मेरे को लगता है ज़्यादा है कि जब तक इसका सुधार ना हो तब तक हमारी जो बदनामी है और हमारा जो मतलब क्रिकेट का जो दूरदर्शा, चाहे पैसे कितने भी आए, जो हो रही है उसका सुधार होना बहुत जरूरी है।
कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
सर सर नमस्कार, मैं अभिनव यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
अभिनव यादव जी आजमगढ़ से।
अभिनव यादव सर।
अभिनव यादव जी बताइए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आईपीएल में जो कुछ चंद नाम आए हैं जैसे श्रीसंत अंकित चौहान वगैरह, इसके अलावा भी कुछ बड़े नाम होंगे, उन उन खिलाड़ियों के नाम हाईलाइट करके उनके आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए सर, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने से यानी सट्टेबाजी में लिप्त होने से बचे।
जी प्रदीप जी
देखिए, अगर ये प्रॉपर प्रोब हो, सवाल तो ये होता है कि हमको फेथ नहीं है जो प्रोब हुई है। तीन खिलाड़ी पकड़े गए तो सबको लगता है कि यही तीन क्यों, अगर ये मतलब इसका मतलब इसका फैलाव बड़ा होगा। जैसे ललित मोदी जी ने वहाँ से एलिगेशन तीन बड़े खिलाड़ियों पे लगा दी, सच्चाई क्या है? आईसीसी कहती है हमने प्रोब तो की नहीं, हमने बीसीसीआई को बताया, बीसीसीआई कहती है कि आईसीसी ने खुद ही प्रोब शायद की है, उन्होंने हमको नहीं बताया। तो जब
मतलब
तक
टोपी कोई नहीं पहनना चाहता, सब एक दूसरे के
एक एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्रोब होना बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि जो खिलाड़ियों ने अगर गलत किया है वो पकड़े जाएं, कम से कम एक फ्यूचर डिटेरेंट तो रहे। वो डिटेरेंट जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं समझता कि हम अभी आगे और भी बड़े बड़े नाम न बाहर आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता।
एक श्रोता है कार्यक्रम में, उनको शामिल कर लेते हैं। नाम बताएं।
हेलो
जी हाँ, नाम बताएं।
जी नमस्कार सर, मैं कुलवीर बकर बोल रहा हूँ मनगढ़ राजस्थान से।
कुलवीर साहब
सर
जी रखिए अपनी राय।
मैं कहना चाहिए ललित मोदी एक राजस्थान के जयपुर स्टेडियम में मैच होने बंद हो गए, क्या बीसीसीआई ने सही किया इसके साथ? भी हमारे जयपुर में मैच नहीं हो रहे हैं और राजस्थान की आरसीए के वो अलग कर दिया उनको।
राजस्थान में जयपुर में मैच नहीं हो रहे कह रहे, बहुत चिंतित हैं।
देखिए ये क्योंकि किसी को फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आप जब चाहते हैं आप ललित मोदी और वैसे ही लोगों को आप कहते हैं कि ये कमाल के लोग हैं। शास्त्री जी ने ललित मोदी को कहा ये तो मोजेज हैं इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट के, और वही ललित मोदी से जब आपका झगड़ा हो जाता है पावर के लिए, इसलिए आपका झगड़ा नहीं होता कि आप सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किए, इसलिए झगड़ा होता है आपको लग रहा है कि वो पावर गेम में आपसे आपके छीन तो नहीं रहे। तो जब तक ये होता रहेगा तब तक लोगों को कोई फेथ नहीं है कि ये चीज़ मतलब एक नैतिकता के आधार पे एक प्रिंसिपल्ड हुआ है कि या इसमें पॉलिटिक्स हुआ है।
एक ये बताइए कि आईपीएल के जो पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का हम की बात कर रहे हैं, सुरेश रैना रविंद्र जडेजा का जब उन्होंने नाम लिया तो बीसीसीआई ने उन्हें एकदम क्लीन चिट दे दिया, ऐसा क्यों?
वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप कहिए कि देखिए इसकी प्रोब इन्होंने इसका मतलब प्रोब की ही नहीं है। बीसीसीआई कहती है, बीसीसीआई खुद ही मानती है कि कह रही है कि आईसीसी को गई थी क्योंकि आईसीसी ने हमको कुछ बताया नहीं, इसका मतलब उन्होंने क्लीन चिट दी होगी। आईसीसी कहती है कि हमने तो कुछ किया है नहीं क्योंकि इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है इनको दिया। बीसीसीआई को खुद चिंता होनी चाहिए कि अगर ये खिलाड़ी इन पे एलिगेशन लगे हैं तो इनका नाम साफ करने के लिए पूरी तरह से प्रोब
जांच करा।
जब वो नहीं जाँच करा रही तो इसलिए शक हो जाता है कि क्या ये मिली जुली बगत है, क्या हो रहा है।
एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
हेलो
जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, समय काफी कम है।
जी सर, मैं राहुल सिंह फतेहपुर उत्तर प्रदेश से।
जी राहुल सिंह जी बोलिए।
जी मैं ये चाहता हूँ कि ये आईपीएल इंडिया में नहीं होना चाहिए।
आईपीएल इंडिया में नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, आईपीएल इनका जो सुझाव है आईपीएल को इंडिया में होने नहीं चाहिए।
देखिए आईपीएल कहीं भी हो जो उसमें खामियां हैं अगर ऐसे ही चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। तो सवाल ये नहीं कि आईपीएल इंडिया में हो या बाहर हो, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि क्या रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, जो रेगुलेशंस जो भी गलत काम हो रहा है उसको रोके, और अगर कोई गलत कर रहा है तो स्विफ्ट पनिशमेंट हो।
आखिरी टिप्पणी कि बीसीसीआई के अधिकारी अगर वाकई इतने साफ धुले हैं साफ पाक हैं तो इन्हें आज तक कोई सजा क्यों नहीं मिली?
देखिए इसमें तो मतलब ये तो लीगल केस
कुछ है ही नहीं,
कुछ बनते नहीं है, ये तो एथिक्स की सवाल है। ये सवाल है कि आप पब्लिक से चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पैसा, जैसे टीवी राइट्स पे उस पर केस है, जैसे कि ये गुरुनाथ मैयप्पन और राजकुंद्रा पे बैन लगा है, ये बैन भी कोई ऐसा नहीं कि जेल हुई है। तो क्योंकि खेल में एक एथिक्स होती है जो ज़्यादा बड़ी है,
नैतिकता का मामला
है, ये नैतिकता
का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप मैगजीन दी, और उन तमाम श्रोताओं को शुक्रिया जो कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे माफ़ी जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए। कार्यक्रम में आपसे विदा लेंगे लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने कहा है कि देश के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बावजूद अमेरिका के प्रति ईरान का रवैया नहीं बदलेगा। सऊदी अरब में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के 430 संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया है। चीन में पिछले दिनों हिरासत में लिए गए सैलानियों के एक समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि यह घटना चंगेज खान पर एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर गलतफहमी से हुई थी। कीनिया की राजधानी नैरोबी में वेस्टगेट शॉपिंग मॉल को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अब आपसे मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद, यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे। कार्यक्रम का नाम आप जानते हैं, घटनाचक्र। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें, नमस्कार।